आजादी को इंटरनेट की भाषा बनाने और कला की हर विधा से जोड़ने का हमने उठाया है बीड़ा। क्या आप हैं हमारे साथ? आज ही लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंद युग, युवा उम्मीदों और प्रतिभाओं का हिंदुस्तानी मंच।
पाठी का जब उद्घाटन हो रहा था तब भी मैं मौजूद था। राजेंद्र यादव जी ने उस दिन एक बात कही थी कि पाठी तभी चलेगी जब आप कुछ ऐसा लिखें जो अलग हो जाए, और अलग ना हो तो सनसनीखेज तरीके से हो जाए, बिना इसके कैसे चलेगी पत्रिका। पता नहीं वो वक्तव्य सही था गलत था, फैसला तो एक साल में हुआ होगा, क्योंकि एक साल से लगातार हम भी इस पत्रिका में लगातार ये लोग लिखवाते रहे और हम लिखते रहे। लेकिन यकीनन पाखी को देखकर कहा जा सकता है कि गांव से इसका सरोकार नहीं रहा एक साल में। अब शायद राजेंद्र यादव भी बैठे हैं तो हंस के भी सरोकार नहीं है, उस लेखन से नहीं है। लेकिन हम चूंकि मीडिया से जुड़े हैं, पत्रकारिता पे कहना है, और कहा गया कि पत्रकारिता और साहित्य का रिश्ता बहुत करीब का है, तो फिर पत्रकारिता के रिश्ते भी क्यों होंगे और मीडिया के रिश्ते भी गांव से क्यों होंगे। नौटियाल जी ने एक बात कही कि अब लोगों का मन गांव में रहा नहीं। नौटियाल जी हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन हमें लगता है कि अब लोगों का मन शहर में नहीं रहा, इसीलिए बात गाँव की हो रही है। क्योंकि जो स्थिति आई है, जिस रूप में आई है, और बतौर पत्रकार हम लोग देख रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं स्थितियों को, उसमें एक बात तो साफ है कि ये सरकार गांव की सरकार नहीं है। इस सरकार से मतलब अभी की सरकार से नहीं है, इस सरकार से मतलब शायद एक लंबी प्रक्रिया जो संसदीय व्यवस्था के तहत सत्ता तक पहुंचाती है राजनीतिज्ञों को, उसके सरोकार वाकई गाँव तक है नहीं। 20 करोड़ से ज्यादा की जरूरत इन सरकारों को है नहीं लोगों की, आप यकीन जानिए। कोई मतलब नहीं है इस देश का वित्त मंत्री कौन है, कोई मतलब नहीं है इस देश का कृषि मंत्री कौन है, कोई मतलब नहीं है इस देश का प्रधानमंत्री कौन है। गांव चलते रहेंगे, और खासतौर से नदियों के किनारे जिन जगहों पर खेती होती है उसे वाकई कोई मतलब नहीं है कि उसके प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री है, वहां कौन कृषि मंत्री है, वहां कौन वित्त मंत्री है। कोई स्थिति कुछ उसके साथ जुड़ती ही नहीं है, क्योंकि नीतियां उसके साथ नहीं जुड़ी है, व्यवस्था उसके साथ खड़ी नहीं हुई है। तो वो शख्स एक अपनी धुरी में अपने तरीके से ना सिर्फ अन्न उपजा रहा है बल्कि रोजगार की व्यवस्था भी कर रहा है। ये एक समूचा ढांचा ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों के भीतर से निकले हुए जो लोग शहर तक आते हैं वो नौकरी पेशे, उनकी तादाद गिनी जा सकती है और हर सेंसस में गिनी जाती है। 1951 का सेंसस बताता है इस देश में 57% लोग किसान थे। 10 साल बाद उस समय तो अच्छी स्थिति थी, आजादी की हुंकार देश में थी, लोग तरवचादा थे। 57% से खिसक के मामला 51% पर आ गया था 1961 में, और 2001 का सेंसस बताता है कि किसानों की संख्या इस देश में घटते घटते 28%। ऐसा नहीं है बाकी सब बेहतर रोजगार, बाकी सारे किसान मजदूर में तब्दील हो चले हैं। स्थिति ये आ गई है, जमीन पे कब्जा हो गया है। तकरीबन 5 करोड़ लोग इस नई अर्थव्यवस्था के तहत स्थापित हो गए हैं इसी देश में। ऐसा नहीं है कि उनकी स्थिति सुधर गई है, उनकी स्थिति कमोवेश अच्छी हो गई है, या उनको जो मुआवजे के तौर पर राशि दी गई होगी वो उनके साथ बेहतरीन जीवन जी रही हो, ऐसा भी नहीं है। उनकी स्थिति बदतर हुई है। सवाल है यह स्थिति मीडिया के भीतर नहीं झलकती, मीडिया के भीतर क्यों झलकेगी, या पत्रकारिता उस दिशा में क्यों देखेगी जब सरकार नहीं देख रही है। सरकार जिन परिस्थितियों में चैनल का लाइसेंस देती है या अखबार निकालिए तो नामों को लेकर जो जद्दोजहद होती है और जिस तरीके से अखबार के कागज मिलते हैं उसको लेकर विज्ञापन की जो मारामारी होती है, हमें नहीं लगता है कि गांव की जरूरत है कहीं इस मीडिया की। सवाल है, यहां से एक दूसरा सवाल खड़ा होता है, अगर गांव को हटा दिया जाए तो क्या इस देश की संसदीय व्यवस्था चल सकती है? यकीनन हम कह सकते हैं नहीं चल सकती है। राहुल गांधी को भी कलावती चाहिए, लेकिन कलावती के गांव की स्थिति क्या है यह मीडिया को नहीं दिखाई देगा, या यह किसी भी हिस्से में किसी भी रूप में सामने नहीं आ पाएगा। या तो कलावती आएगी या राहुल गांधी आएंगे, हो सकता है वो किसी दलित के घर रात गुजारेंगे तो फिर वो दलित एक शख्स के तौर पे आ जाएगा। इसका मतलब है एक पूरा तंत्र खड़ा हो रहा है जो भीड़ में सबको अकेला कर रहा है। पहली बात तो यह है, हर कोई अकेला हो जाए, यानी इस दौर में अगर 40,000 किसानों ने आत्महत्या की है तो हम कह सकते हैं 40,000 अकेले किसानों ने आत्महत्या की है, हर कोई अकेला था वहां पर। इसका दूसरा पक्ष एक और शुरू होता है, नौटियाल जी ने एक बड़ी बात कही भाषा के तौर पर, लेकिन हम व्याकरण के तौर पर नहीं जा रहे हैं, हम कंटेंट के तौर पर जा रहे हैं। एक संवादहीनता बनाई जा रही है, स्टेट की भाषा नहीं समझ में आ रही है लोगों को, गांव की भाषा स्टेट समझने को तैयार नहीं है, तो मीडिया और साहित्य क्यों समझेगा उस भाषा को? एक संवादहीनता ऐसी बना दी जाएगी जहां आप एज ए ह्यूमन बीइंग महसूस ही नहीं करेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं या उनके दर्द ये हैं। हम अपने आप को अलग खड़ा कर लेंगे, हम खड़ा कर रहे हैं, लगातार खड़ा कर रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है इस देश के ग्रामीण स्थितियों में क्या स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि हमारी जरूरत, हमारे इर्द गिर्द का वातावरण हमें लगातार ना सिर्फ अकेला कर रहा है बल्कि हमारे अकेलेपन को भी उन्हीं परिस्थितियों के साथ जोड़ रहा है जो परिस्थितियां हमारी थी नहीं, हम उसकी गुलामी कर रहे हैं हम परिस्थितियों की, और इसको जोड़ते चले जा रहे हैं आगे ताना बुना। टेलीविजन तो 10 साल की उम्र हुई है, न्यूज चैनल आने का सिलसिला तो 1999 में ही शुरू हुआ था, उससे पहले नई अर्थव्यवस्था आ गई थी। यकीन जानिए नई अर्थव्यवस्था नहीं आती तो इस चैनल का ये चेहरे नहीं होते सामने। पहली बार चैनलों या टेलीविजन को लेकर किसी ने अगर दरवाजे खोले थे तो पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, उस दौर में पहली बार दरवाजे खोले थे इस देश में, जब प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दी गई थी कि आप मेट्रो पे न्यूज ले आइए, और उस दौर में द वर्ल्ड इज वीक आता था या आज तक शुरू होता था या सुबह के जो कार्यक्रम आते थे वो शुरू होते थे, उस दौर में शुरू हुए थे। लेकिन उसी दौर में मनमोहन सिंह का प्रयोग भी शुरू हो गए थे। तो जो एक नई इकोनॉमी खड़ी की जा रही थी वो इकोनॉमी एक नए संकट के साथ खड़ी जा रही थी, तो संकट गांव में बस रहे थे या संकट गांव से निकलकर शहर की ओर झांकने जा रहे थे। गुजरात की सरकार खुल्लम खुल्ला ऐलान करती है हमने सबसे ज्यादा शहर बनाए हैं, और यकीनन पिछले 8 साल के भीतर 50 नए शहर गुजरात में सिर्फ बने हैं। इसका मतलब है वहां गांव खत्म हो गया, यकीनन गांव खत्म हो गया, यानी गांव की परिवेश खत्म हो गया, गांव के संबंध खत्म हो गए, उन संबंधों के आधार पर जो जीवन होता था, रचा बसा था, भारतीय संस्कृति का जो प्रतीक था वो खत्म हो गया। तो ये तो गुजरात की बात हुई, पूरे देश में ये पूरी प्रक्रिया चल रही है कि गांव को शहर बना दिया जाए, और ये विकास की मोटी लकीर यहीं से शुरू की जा रही है। विकास का मतलब अगर आपको उपभोक्ता बनाया जा सकता है तो शायद वो विकास है। इस देश में आप बेहतरीन नागरिक तभी हैं जब आप एसी का प्रयोग करते हैं, जब आप गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। अगर आप इस देश में ऐसी व्यवस्था के हिस्से से जुड़े हुए हैं जिसमें आप उपभोक्ता ही नहीं तो आप इस देश के सबसे निकृष्ट नागरिक हैं। ये इकोनॉमी का आधार है इस देश की, उसमें हम खड़े हो रहे हैं। इसका दूसरा पक्ष, हमें मौका मिलता है, इलेक्शन के समय हम गए बेगूसराय से दरभंगा तक के दौर में, हमने देखा कि वहां सड़क किनारे लोग शतरंज खेल रहे हैं, किसान शतरंज खेल रहे हैं, मजदूर शतरंज खेल रहे हैं। हमने उनका इंटरव्यू भी किया, उनसे पूछा भी कि आप शतरंज क्यों खेल रहे हैं, बाकी खेल भी तो खेला जा सकता है। पता चला शतरंज कई दिन तक चलती है, एक अखबार 3 रुपए का, वहां 3 से 4 रुपए तक के अखबार होते हैं, 1-2 रुपए में अखबार नहीं मिलते हैं, बिहार में कॉस्टली है अखबार कंपेटिवली देश के दूसरे हिस्सों की तुलना में, लेकिन अखबार वहां पढ़े जाते हैं, एक एक लाइन पढ़ी जाती है, एक एक लाइन पे जद्दोजहद की जाती है, कभी कभी वैचारिक तौर पर टकराव भी हो जाता है और शतरंज खेली जा रही है। अब उसके बीच में अटल बिहारी वाजपेयी ने व्यवस्था की थी कि समूचे देश में कॉर्डन खोल कर दिया जाए, सड़कों का सड़क बना दी जाए, तो हम इन सवाल को लेकर पहुंचे थे कि आपके यहां भी सड़क पहुंच जाएगी तब क्या होगा। कहा गया अच्छा है गाड़ियां दौड़ेगी, हमें भी लगा शायद गाड़ियां दौड़ेगी। जब सड़कें कुछ कुछ बनी, बिहार में भी परिवर्तन हुआ, हमें फिर जाने का मौका मिला। फिर उन स्थितियों पर ठोक रहे थे। हमें लगा उन सड़कों के बनने से उस परिवेश या उनकी स्थितियों में कोई अंतर नहीं आया है, वो जस की तस स्थिति है। आवाजाही जरूर चालू हो गई है, आवाजाही शुरू हो गई है, लोग आने जाने लगे हैं। अब आप सोचेंगे इससे व्यापार बढ़ गया है, इससे उनकी इकोनॉमी में सुधार आ गया, बिल्कुल नहीं। पर कैपिटा इनकम बिहार का गिर गया है, ग्रामीण इलाकों में, शहरों में बढ़ा है, पटना का पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है। और शहर जो बनाए जा रहे हैं इस देश में, उसके पर कैपिटा इनकम का जो एवरेज निकाला जाता है वो एवरेज लगभग 3,500 रुपए आ रहा है। और दूसरी तरफ गांव का जो पर कैपिटा इनकम सरकारी दृष्टिकोण से निकाला जा रहा है वो लगातार उठापटक करने के बाद भी 1,500 रुपए पार नहीं कर पा रहा है। ये गैप गांव और शहर का है, शहर में मजदूर है, गांव में छोटे किसान है। और जिसके पास जमीन है वो जमीन के मालिकान जिस भी रूप में रहते हैं वो बहुत साफ है, वो खेती करने नहीं जाते। सवाल ये है कि क्या यहां से कोई विकल्प या अल्टरनेटिव शुरू होता है या नहीं होता है, या शहर अगर गांव को खत्म करके बनाए जा रहे हैं तो साहित्य या पत्रकारिता का नजरिया भी क्या बिल्कुल वही होना चाहिए कि इसी तरीके से तमाम माध्यमों के जरिए गांव के भीतर जो हम सपने संजोने की दिशा में बढ़ रहे हैं कि आप भी शहर वाले बन जाइए और फिर खत्म हो जाइए, क्या गांव के भीतर से उसकी कोई अपनी स्थितियां खड़ी नहीं की जा सकती हैं, जो स्थितियां खड़ी होने की दिशा में बढ़ा जा सकता है? क्योंकि बड़ी तादाद है, बड़े लोग हैं, एक बड़ी इकोनॉमी है, बहुत जमीन है, बड़ी संख्या है जो एक मजदूर के तौर पर, लेकिन मौजूदगी है उसकी। थोड़ी सी लाइन को बदल दीजिए, हम पूरे रेड कॉरिडोर में घूमे। रेड कॉरिडोर का मतलब जो माओवादियों का जो पूरा इलाका है, जो आंध्र प्रदेश के इलाके से शुरू होता है और बंगाल तक चला गया, हम उस पूरे इलाके में घूमे हैं। शहरों में भी उतना ही घूमे हैं, गांव में भी उतना ही घूमे हैं। हमें आज तक समझ नहीं आया कि उन इलाकों की जो आर्थिक सामाजिक स्थितियां हैं, उन आर्थिक सामाजिक स्थितियों को लेकर सरकार खुद सवाल क्यों नहीं करती है, या उन इलाकों से आने वाले जनता के नुमाइंदे सवाल क्यों नहीं खड़ा करते हैं? ना विधानसभा में खड़े हो पाते हैं, ना वो संसद में खड़े हो पाते हैं। वहां पर हमको बड़ी तादाद में बेहतरीन जीप, जो सबसे पहले पुलिस के पास जीप आती है, वो दिल्ली पुलिस के पास भी नहीं आती होगी, जो वहां मिल जाती है, बढ़िया हथियार भी दिखाई देते हैं। हम तो जिस दौर में थे उस समय हमने देखा था शरद पवार जो बजट बनाते थे महाराष्ट्र का, जो सबसे उस दौर में, हम जिस समय कह रहे मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, 90s की बात कर रहे हैं, जिस समय मुख्यमंत्री थे अव्वल राज्यों में था, बाद में कर्नाटक और आंध्र का नंबर आया जब वो अव्वल डिस्ट्रिक्ट में हुए, नंबर एक था। लेकिन बजट जो पूरे स्टेट का बजट होता था, उस पूरे स्टेट से ज्यादा बसल बजट हमने देखा कि माओवादी यानी नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए हो रहा था। लेकिन सवाल है वहां पर सड़कें इतनी बेहतरीन है कि सड़क पे हवाई जहाज उतर जाए। हम आपको बता रहे हैं कि चंद्रपुर और गढ़चिरौली के इलाके में अगर आप चले जाइए तो आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी चौड़ी सड़कें जिसपे हवाई जहाज लैंड कर सकता है। लेकिन जरा सा अंदर खिसकेंगे आप तो आपको लगेगा कि गोंड आदिवासियों की हालत ऐसी कैसी हो सकती है, जो अभी भी भूसा खाते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये है देश के टॉप 10 इंडस्ट्रीज वहां पर इंडस्ट्री लगाते हैं, लेकिन लोगों की स्थिति वहां पर यह है कि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है जिनकी जमीन तो हथिया ली गई, ये कैसे हो सकता है? ये है इस देश में। अगर वहां के मुद्दे उठकर आते हैं तो क्या उन मुद्दों के आश्रय वहां पर बुंदेलखंड में लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं? बुंदेलखंड की स्थिति जर से जर, पिछली बार जब हंगामा शुरू हुआ था बुंदेलखंड को लेके, तो हमने टेलीविजन पे एक व्यक्ति को मरते हुए दिखलाया था। मरते हुए से मतलब यह है कि हमारे रिपोर्टर पहले वहां पर गई थी, उस समय हम सहारा में हुआ करते थे, हमारी रिपोर्टर वहां पर गई, वो स्टोरी करके लाई एक घंटे की, हमने उसे दिखाया, उसके बाद वो दोबारा गई, और जब दोबारा गई तो उसने वहां से हमें टेलीफोन किया कि उस शख्स की जो स्टोरी हम लेकर आए थे, वो शख्स हमारे सामने अंतिम सांसें ले रहा है, हम उसी घर में मौजूद हैं। दूसरी बार जब गई थी उस समय राहुल गांधी गए थे, हाथ में बिस्लरी बोतल थी, वो एक अलग मसला है कि आप किस तरीके से गांव से जुड़ना चाहते हैं, किस रूप में जुड़ना चाहते हैं। वो मायावती का भी एक अपना रूप हो सकता है, इनकार नहीं कर रहे हैं, वो अपने घेरे में किसी दूसरी चीज की स्थितियों को पकड़कर चली होंगी, राहुल गांधी अपने घेरे में किसी तीसरी चीज को पकड़कर चल रहे हैं, कोई भी पॉलिटिशियन चल सकता है। राजनाथ सिंह को हमने किसान यात्रा निकालते विदर्भ से देखा, उन्होंने वहां ऐलान किया और उसके बाद वो सीधे बुंदेलखंड भी आए, लेकिन किन स्थितियों में थे, जुड़ाव बिल्कुल नहीं था। सवाल है जिस राजनीति के आश्रय इन जगहों का समाधान हो नहीं पा रहा है और जिस मीडिया और साहित्य के जरिए वहां की बातें आ नहीं पा रही हैं, तो फिर वहां की बातें आई नहीं। हमारा ये कहना है कि उन जगहों पर जब लोग पहुंचने शुरू हुए, कुछ एनजीओ पहुंचे, कुछ कार्यक्रम शुरू हुआ, कुछ हुआ, स्थिति हो सकता है कुछ सुधरी हो, लेकिन सवाल ये है कि देखने का नजरिया गांव को लेकर अभी भी मानवीय तौर पर इस देश में नहीं आया है कि वहां की स्थिति अगर बद से बदतर होती चली जा रही है तो मानवीय तौर पर देखें। वो पूरे रेड कॉरिडोर में इतनी बड़ी तादाद में जीपें दौड़ती हैं, वो मैं वाकई कश्मीर में नजर आता था, जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर हम देखते थे। हम कश्मीर में जाके लोग हैरत करते थे, हम उन्हें बार बार कहते थे आप जाइए उस समय आंध्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे जरा खड़े होकर देखिए तो आप समझ पाएंगे। हमें नहीं समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ का मतलब अब भी लोग लगाते हैं कि या तो सरवा जडुम है या नक्सलवाद है। अरे भाई वहां के ग्रामीण लोगों की स्थिति क्या है ये तो देखिए, लोग भूखों मर रहे हैं। अब आंध्र में स्थिति आ गई है कि वहां लोग भूख, लेकिन एक खबर नहीं आ रही है। यकीन जानिए कि एक इनकाउंटर हो जाएगा, वो खबर आ जाएगी, मीडिया में आ जाएगी, पॉलिटिशियंस खड़े हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन लोग आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में खबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये पूरी प्रक्रिया के तहत संवादहीन किया जा रहा है, हमें आपको किया जा रहा है, इसमें हम आप सहभागी हैं। संसद की भाषा हमें नहीं समझ में आती है, लोकसभा चैनल तो अब घर घर में आता है, उसमें मजबूरी है, सब केबल वालों को दिखलाना ही है, उसको खोल के देखिए आप हैरत में आएंगे। सूखा पे बात हो रही है, वो हंस रहा है, ठाके लगा रहा है, और ऐसा वैसा कोई शख्स ठाके नहीं लगा रहा है, ऐसा शख्स लगा रहा है जिसके वाकई सरोकार रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस दौर में जो सरोकार का शब्द आज हो सकता है कल और डायल्यूट हो जाए, कल और वो लकीर पतली होती चली जाए, तब आप क्या करेंगे, और हम खुद उसमें संवेदनहीन होते चले जाएंगे, तब क्या स्थितियां बचेंगी, जुड़ाव कैसे होगा, किस रूप में होगा, क्या किन स्थितियों को खारिज हमें करना होगा। मोहन धारिया साहब अक्सर जिक्र करते हैं महाराष्ट्र में हमने 3 गांव बनाए हैं, आइडियल गांव बनाए हैं, वो अक्सर जिक्र करते हैं। उसमें एक गांव विदर्भ का भी है, सावनेर के नजदीक का एक गांव है, विदर्भ का इलाका है, चूंकि हम जाते हैं तो वहां हमने देखा है, वाकई आइडियल गांव है। सवाल है इस पूरे दौर में एक बात हमारे जहन में जो लगातार आ रही, क्या इस पूरे रेड कॉरिडोर में कोई अपने स्वावलंबन की स्थिति नहीं खड़ी की जा सकती है? नहीं की गई है, ये फैक्ट है। इसलिए माना जाता है कि माओवादी एक दूरी के बाद फेल हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह एक फैक्ट बार बार उभरता है, जो एक दूसरा पक्ष उभर के आता है कि इन जगहों पर बंदूक के आश्रय उन्हें लगातार धकेला जा रहा है, तो ऑल्टरनेटिव कैसे दे पाएंगे। इसका जिक्र लंबे लंबे लेखों में अरुंधति राय ने किया भी है, ये एक फैक्ट है। लेकिन एक दूसरा हिस्सा भी यहीं से शुरू होता है कि जिस देश में लगातार एक के बाद एक बजट आए हों, 60 साल तक 60 बजट आ चुके हों, 62 साल हो गए हैं, पंचवर्षीय योजनाएं 12 बन चुकी हों, उस देश की स्थिति, किसी भी स्थिति के दौर में आप जब भी पहुंच जाइए, आजादी के बाद से आपको जब लगता है जिस नेता का दिमाग में आपकी बात आती हो कि उसके सरोकार रहे होंगे, उसकी किताब या उसके वक्तव्य उठा के आप पढ़ लीजिए, वो बार बार कह रहा है कि गांव खत्म हो रहे हैं, चाहे वो मदिलेमाए हो चाहे मधुडंडवते हो, उससे पहले लोहिया का आप उठा के देख लीजिए, वो लगातार कह रहे हैं खत्म हो रहे हैं, आज भी यही बात की जा रही है खत्म हो रहे हैं। स्थिति हमने बताया आपको कि किस तरह 57% से मामला 28% तक आ गया, किसानों को लेकर लोग मजदूर में तब्दील होते चले जा रहे हैं। क्या मीडिया की ये जरूरत नहीं है, क्या साहित्य की ये जरूरत नहीं है, क्या इस पर लिखा जाना नहीं चाहिए, या ये जरूरत नहीं बची है? हमें लगता है नहीं, ये ठीक कहा नौटियाल साहब ने, इस दौर में बिकने लगे हैं चीजें, लोग पढ़ रहे हैं, यकीनन पढ़ रहे हैं, बड़ी तादाद में पाठक वर्ग तैयार हो गया, बड़ी तादाद में अखबार छपने लगे हैं, उससे पहले ऐसे नहीं छपा करते थे। लेकिन सवाल है कि इस पूरी प्रक्रिया में क्या वाकई ऐसी शून्यता है जहां पर ऐसे मुद्दे उभरेंगे तो टेलीविजन को टीआरपी नहीं देंगे और अखबार में पढ़े नहीं जाएंगे? हम ऐसा नहीं मानते, हमें ऐसा नहीं लगता है। हमें लगता है ये शायद एक ऐसी स्थिति देश के भीतर बनाई जा रही है या बना दी गई है और उसमें सहभागी सब होते चले जा रहे हैं, जहां पे आप अपनी मौजूदगी का एहसास इस बात को लेकर करें कि आप जहां पर खड़े हैं वहां पर आप अपराधी हैं। अगर आप उस विजन के साथ जुड़ेंगे तो आपको यह पद भी छोड़ना पड़ेगा, ये गद्दी भी छोड़नी पड़ेगी, ये सुविधाएं भी त्यागनी पड़ेगी, और इसके बाद आपके सामने मुश्किलें आ जाएंगी और वो मुश्किलें आपको उस घेर में बनाए रखेंगी। ये स्थिति आ रही है। मीडिया के संपादक, हमें नहीं लगता है कि आज की तादाद में उन्हें जितने पैसे मिलते हैं या वो जिस सुविधा के साथ अब सत्ता से जुड़ना चाह रहे हैं, मारा मारी चल रही है राज्यसभा में, कौन पत्रकार जाएगा, हंगामा मचा हुआ है पत्रकारों के गलियारे में। भाई क्यों, आपकी तो स्थिति पत्रकार वाली थी, आप तो पत्रकार के तौर पर ये बात होती थी कि आप चौथे खंभे आप नजर रखेंगे, नहीं लेकिन हम सरकार में शामिल हो जाएंगे। सरकार में शामिल होकर जो सरकार पिछले 60 साल से इस देश में जो नजरिया रखे उससे हटकर आपके पास क्या दृष्टिकोण है? हम नाम यहां लेकर आपको बताते हैं कि पिछले दिनों की बात है, चंदन मित्रा तो नॉमिनेटेड है। चंदन मित्रा ऐसे नहीं है कि अच्छे पत्रकार नहीं है, बेहतरीन पत्रकार है, हम मानते हैं, लेकिन हम आपको एक स्थिति बतलाते हैं। जब जसवंत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया तो हमारे यहां वो गेस्ट थे, हमने पूछा चंदन जी बताइए जरा कि एक टेलीफोन पर किसी को निकाल देना ये कहां तक सही है। उन्होंने कहा यार मुझे अभी खबर मिली नहीं है कि निकाला। हमने नहीं, खबर मिलने की नहीं बात है, जसवंत सिंह ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, एक ये तो अजीबोगरीब तानाशाही है। सवाल है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते होंगे, लेकिन पार्टी से जुड़े हुए हैं तो पार्टी की लाइन उनको लेनी होगी। लेकिन जब आप पत्रकार हैं तो आपको जनता की लाइन लेनी होगी, लेकिन संपादक से आगे का रोल कहां जा रहा है? पॉलिटिक्स में जा रहा है। इसका मतलब यह माना जाए क्या कि पत्रकारिता एक जगह जाके स्टैग्नेंट हो जा रही है, उसके आगे बढ़ नहीं पा रही है, उसके आगे रास्ता सिर्फ एक राजनीति का निकलता है, और राजनीति जो लगातार अमानवीय होती जा रही है, तमाम विसंगतियों के साथ खड़ी हो रही है, असुविधाओं को भोग रही है, अपनी स्थितियों को जी रही है, तो क्या यह रास्ता वहां जाके रुकेगा? मेरे ख्याल से ये सारे सवाल बार बार हमारे सामने उठते हैं, जिसको लेकर ये बार बार सवाल आते हैं कि आखिर इन स्थितियों को तोड़ने के लिए क्या उन्हीं स्थितियों को अपनाना पड़ेगा जिन्होंने इन स्थितियों को जन्म दिया है। मुश्किल ये आ रही है कि क्या कोई अल्टरनेटिव किसी रूप में खड़ा करने की तौर तरीके समझ कोई डेवलप हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस दिशा में हमारे कदम बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। बाहर से कोई आएगा नहीं, ये भी एक फैक्ट है, ये भी हम समझ रहे हैं, हमें उसके बीच में काम करना उसके स्थितियों से, लेकिन हम कहीं दबाव समूह भी होते थे, उस रूप में भी सामने जब नहीं आ रहे हैं इस पूरे सिस्टम में, और हम उसकी शागिर्दगी करते हुए चीजों को लगातार जिला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये उपयोगिता सिवाय एक धंधे के अलावा कुछ है नहीं। तो स्थितियां जब धंधे में तब्दील हो रही है तो आप मुनाफा देखेंगे और बाजार देखेंगे, और उसके जरिए ये बात सामने आएगी कि फलाएं अखबार सबसे ज्यादा बिकता है, और देश के 10 अखबार अभी जो इस बार जो आया है नया आंकड़ा, 10 अखबार के जितने पाठक हैं, आजादी के समय तो उतने पाठक कुल नहीं थे, तब आप क्या करोगे? इस देश में आजादी के दौर की जो स्थिति थी, जितनी बड़ी तादाद में उस समय गरीब थे, गांव थे, उससे बड़ी तादाद में इस समय लोग सड़क पे हैं, आसमान की छत नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है विस्थापित, उनके पास कोई जमीन ही नहीं है, इतनी बड़ी तादाद हो चली है इस देश की, लेकिन वो बिल्कुल नेतृत्वहीन है, या कहिए वो विकल्पहीन है, अपने तौर पे खड़ी हुई है। मेरे ख्याल से साहित्य और मीडिया का रोल यहां से शुरू होता है, हम कर पाए बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।
कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग, लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग्म, अपनी बात अपनी भाषा में।